Om Shivaya Nama. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dashashloki, presented by Swami Sri Vishnu Vallabhanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Bhavana Bhajana Shaktihi Parayoste Naraktihi नच विषय विरक्ति ध्यान योगेर शक्ति इति मनसि सदाहं चिंतयन् आद्य शक्ते रुचिरवचन पुष्पहि अर्चनं संचिनोमि वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात् पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ॐ भद्रं नो अपि वातय मनः ॐ शान्ति 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 श्री शंकर भगवत पाद विरचिता दशश्लोकी न भूमिर्न तोयम् न तेजो न वायु न खं नेन्द्रियं वा न तेषां समूह अनैकान्तिकत्वात् सुषुप्तेकसिद्धस्तदेको वशिष्ठ शिवः केवलोऽहम् न वर्णा न वर्णाश्रमाचारधर्मा न मे धारणाध्यानयोगा अनात्माश्रयाहम् ममाध्यासहानात् तदेको वशिष्ठ शिवः केवलोऽहम् न माता पिता वा न देवा न लोका न वेदा न यज्ञा न तीर्थम् ब्रुवन्ति सुषुप्तौ निरस्तातिशून्यात्मकत्वात् तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम् न साङ्ख्यम् न शैवम् न तत् पाञ्चरात्रम् न जैनम् न मीमांसकादेर्मतम् वा विशिष्टानुभूत्या विशुद्धात्मकत्वात् तदेको वशिष्ठ शिवः केवलोऽहम् न चोर्ध्वम् न चाधो न चान्तर् न बाह्यम् न मध्यम् न तिर्यम् न पूर्वापरादि व्यद्व्यापकत्वात् अखण्डैकरूपस्तदेको वशिष्ठ शिवः केवलोऽहम् न शुक्लम् न कृष्णम् न रक्तम् न पीनम् न कुब्जम् न पीतम् न ह्रस्वम् न दीर्घम् अरूपम् तथा ज्योतिराकारकत्वात् तदेको वशिष्ठ शिवः केवलो न शास्ता न शास्त्रम् न शिष्यो न शिक्षा न च त्वम् न चाहम् न चायम् प्रपञ्च स्वरूपावबोधो विकल्पा सहिष्णो तदेको वशिष्ठ शिवः केवलोऽहम् न जाग्र
न मे स्वप्न को वा सुषुप्ति न विश्वो न वाति जसः प्राज्ञ
को वा
अविद्यात्मकत्वात्रयाणां तुरीयस् तदेको वशिष्ठ शिव केवलोऽहम् अपि व्यापकत्वादितत्वप्रयोगा स्वतः सिद्धभावा अनन्याश्रयत्वात् जगत्तुच्छमेतत् समस्तं तदन्यत् तदेको वशिष्ठ शिवः
केवलोऽहम्
न चैकं तदन्यत् द्वितीयं कुतः स्यात् न वा केवलत्वं न चाकेवलत्वं न शून्यं न चाशून्यम् अद्वैतकत्वात् कथं सर्ववेदा सिद्धं ब्रवीमि कथं सर्ववेदा सिद्धं
ब्रवीमि।
इसलिए सर्ववेदांत सिद्धांत, वेदांत सिद्धांत क्या है? दस श्लोक की तो चलो जितने श्लोक हो रहे हैं, कोई पूछे तो इतने ही बता देना। सर्वेषां वेदांतानां अद्वैत ब्रह्मणी एव तात्पर्यावसानम्। संपूर्ण वेदांतों का एकमात्र जो पर्यवसान है, जो उसका अभिप्राय है, सर्वेषां वेदांतानां अद्वैत ब्रह्मणी एव, जो जीवात्मा है वह परमात्मा से अलग नहीं है, लेकिन हो गया है। क्यों हुआ? हुआ वो भी मान लिया है, हुआ ही नहीं है, अलग तो है ही नहीं, फिर भी बोलते अलग है अलग है। चलो जैसा भी है ठीक है। तो स्थूणा निखनन न्याय, बार बार हिला करके जैसे खूंटे को मजबूती से गाड़ा जाता है, उसी प्रकार से यहां पर भी बातें अलग अलग होंगी, लेकिन है वही बात। यदा वै पुरुषः स्वपीति नाम सता सौम्य तदा संपन्नो भवति। जब यह पुरुष स्वपीति नाम सोता है, श्लोक में आया है, सुषुप्तो निरस्ताति शून्यात्मकत्वात् तदेको वशिष्ठ शिवः केवलोऽहम्। पहले वाले श्लोक में है सुषुप्ति एक सिद्ध, दूसरे में है अनात्मा श्रयाहम ममाध्यासहानात्, और तीसरे में दिया शून्यात्मकत्वात् सुषुप्तो निरस्त। ये हेतु है, सुषुप्ति में सारी चीजों के निराकरण होने के बावजूद आत्म चैतन्य की सत्ता बनी रहती है, और चीजें बदलती रहेंगी सभी अवस्थाओं में। जैसे जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीनों अवस्था अलग अलग है, तीनों के नाम अलग अलग है, उसके शरीर भी भिन्न भिन्न है और विषय भी भिन्न भिन्न है। जागृत अवस्था के विषय स्वप्न अवस्था में नहीं है, स्वप्न अवस्था के विषय सुषुप्ति में नहीं है, जागृत अवस्था के विषय स्थूल है, स्वप्न का सूक्ष्म है और सुषुप्ति का विषय अज्ञान, यही है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, तीसरा क्यों कहा कारण शरीर? हाँ, स्थूल और सूक्ष्म का कारण है, इसलिए उसका नाम है कारण शरीर। कोई पूछे कारण शरीर का स्वरूप क्या है, तो यही है कि अज्ञान है वो, और अज्ञान किसको बोलते हैं? अविद्या। अविद्या किसको बोलते हैं? भ्रम। देखो कितने पर्यायवाची शब्द है। तो सुषुप्ति में जो हम चले जाते हैं और फिर जगते हैं, उठते हैं, सुषुप्ति काले सकले विलीने तमोभिभूत कम, अज्ञान से अंधकार से पूरे अभिभूत हो जाते हैं। सुषुप्ति अवस्था ऐसी अवस्था है खिड़की के पास पहुंचना। खिड़की को जैसे न अंदर कह सकते और न ही बाहर कह सकते, वही हिसाब यहां पर भी। जागृत अवस्था में जो आनंद रूप परमात्मा की बात चल रही थी कल, कि जो व्यापक है, अखंड है, अनंत है, जब हम किसी के साथ व्यवहार करते हैं और उस समय सामने वाले व्यक्ति में हम परमात्मा का दर्शन कर पाते हैं क्या? यदि करने लग जाएंगे तो क्या करेंगे फिर? व्यवहार तो होगा लेकिन बोलना नहीं है कि मैं तुमको परमात्मा के रूप में देखता हूं। बोलेंगे तो फिर तो वो भी थोड़ा बनने की कोशिश करेगा ना, कि जैसा मैं दिख रहा हूं वो परमात्मा ठीक है कि इससे अलग परमात्मा दिखना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति की फोटो खींचो बिना बताए जैसा है वैसे, उसमें जितनी नेचुरलिटी होती है ना, जो स्वाभाविकता, वो बता दो ना जब, हाँ जी फोटो खींच रहे जरा कैमरे की तरफ ध्यान देना, अब वो इधर उधर भी होगा, अच्छा अच्छा थोड़ा कपड़ा संभाल लूं, हाँ ऐसे करें, अच्छा अब ठीक लग रहा है, हाँ थोड़ा चीज हंसो, पहले अपने मुद्रा में रहा होगा, बस हो गए ना, बनावटी आ गई। दिन रात सबके साथ हम लोग व्यवहार कर रहे हैं, सबके अंदर वही परमात्मा है, वेदांत के माध्यम से जाना, श्रवण किया, सुनने से एक बार ये ज्ञान तो होता है, जिसका नाम रखा आपात ज्ञान। सुना, मालूम पड़ा, हाँ मैं परमात्मा का ही अंश हूं। फिर भूल क्यों जाते हैं? तो वहां ये बताया कि ये संशय विपर्यय आदि से जो शैवाल की बात आ जाती है ना, उससे वो बार बार ढक जाता है। और ये ढकने वाला कौन है? तो बोले ये भी उसी की महिमा है। प्रातः काल उठे सबसे पहले क्या बोलेंगे कि विनोद की बात करते लोग, गीता के 15वें अध्याय का श्लोक है, सर्वस्य चाहम, सबके हृदय में क्या है? बोले चाय पीने की इच्छा है। कई जगह चाय को चाह भी बोलते हैं, और चाह का मतलब ऐसे हिंदी में उर्दू में तो चाहना होता है, वहां है सर्वस्य च अहम, च अहम मिलाकर के बन गया चाहम। कोई ऐसा अर्थ न करे इसे सुस्पष्ट कर दिया, आप लोग सत्संगी हैं, बाहर वाले तो जो आप बोल देंगे वो मान लेंगे। सर्वस्य च अहम कहां रहते? तो हृदय सन्निविष्ट, हृदय में ही परमात्मा का निवास है। लेकिन उस हृदय के अंदर कैसे प्रकट होंगे? जिस ज्ञान को सुनने के बाद जब दोबारा जानते हैं, अथवा संशय विपर्य रहित ज्ञान होता है, तब उसी को बोलते हैं कि अब मुझे याद आ गया। याद आ गया का मतलब इससे पहले भी कई बार सुना होगा, लेकिन सुनने के बाद भी परमात्मा से एकमेक होकर के जो अहम ब्रह्मास्मि अनुभवात्मक जो महावाक्य है, इसको हम सार्थक नहीं कर पाए, इसमें क्या प्रमाण है? यदि ये सार्थक हो गया होता तो आज शायद हम लोग यहां नहीं होते। कहां होते फिर? विमुक्तश्च विमुच्यते, मुक्त हो जाते। और अभी हम यहां है, जन्म लेना पड़ा, कहीं न कहीं गलती हुई है। अब लोग बोलते महाराज आप मुक्ति की बात करते हो, जन्म लेने के बाद परेशानी क्या है? यदि जन्म लेना ही पड़े तो क्या परेशानी है? सबसे ज्यादा परेशानी है जैसे कल बताया था, यदि योन्याम प्रपद्येहम, गर्भ में रहते हैं उस समय जो कष्ट का अनुभव होता है, जहां पर कमरे में थोड़ी देर के लिए खिड़की दरवाजे बंद कर दे, कितनी घुटन होती है, लगता है प्राण निकल जाएगा। लाओ जी एयर फ्रेशनर, खिड़की खोलो, एसी चलाओ, पंखा चलाओ, दरवाजा खोलो। और जहां पर हम रहे 9 महीने तक कोई खिड़की नहीं, कोई दरवाजा नहीं, मरे भी नहीं, प्रारंभ था ना जन्म लेना था, आगे घुट के मर जाता आदमी तो वो भी नहीं होता है, क्या चीज है, यहां तो मर भी जाएंगे यदि घुटन ज्यादा हो जाए तो, वहां मरने भी नहीं दिया। ऐसे कष्ट का जब अनुभव होता है तब परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। और ये हम बार बार इस बात को ये दिया है, आत्मपुराण आप लोग कभी सुनना, देखो कभी संयोग हुआ तो सुनाएंगे। आत्मपुराण में इतना विस्तार से वर्णन किया है, एक एक अवस्थाओं का वर्णन किया। ये जागृत स्वप्न तो है ही, और बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, कल बताया था ना, संसार में दुख है नहीं, संसार ही दुख है। ऐसी कौन सी चीज आप बताओ जो दुख के बिना न हो, दुख से युक्त न हो। बस इतना ही है, जैसे कल बताया, जो जो बंधन है पास है उसमें थोड़ी ऐसी चिकनाहट लगी हुई है कि उसके खरोचपना या उससे जो चुभना है वो महसूस नहीं होता। ऑफिस से छूटे भाग रहे हो कहां, घर की ओर, क्यों, स्नेह है, राग है तो बंधन। वो भी ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे हम लोगों का बंधन नहीं है। आप कपड़ा देते हो धोने के लिए धोबी को, ये भी एक बंधन है। आज धोबी आने वाला है कपड़ा लेने के लिए, कहीं जाना है, वो जब तक नहीं आएगा जा नहीं सकते, ये बंधन नहीं है क्या। उतनी देर के लिए हम धोबी के साथ भी बंधे हुए, बाल कटाना है नाई से बंधे, दूध वाला आने वाला है दूध वाले से बंधे, एक एक चीज का। इसलिए कहा आशा पास सतीर बद्धा, सैकड़ों पास है, सैकड़ों बंधन है, लेकिन हम लोग की अनुभव नहीं होता, क्यों, क्योंकि विवेक नहीं करते। कल बताया था यदि विवेक करने लग जाएंगे तो एक एक चीज में बंधन की प्रतीति होने लगती है, और जैसे विवेक उत्तरोत्तर बढ़ेगा तो वह बंधन पास शिथिल पड़ने लग जाएंगे। तो जितनी भी अवस्थाएं हैं जो आत्मपुराण में विस्तार से इसका वर्णन आया, गर्भ में हम जब थे उस समय परमात्मा को हमने कहा कि अब जल्दी से बाहर निकालिए, और प्रपत्ति हो गई, शरणागत हो गए, कर्णप ने कैसे भगवान शंकर की आराधना की, ये आप लोगों ने कल सुना था। ऐसे परमात्मा हृदय में ही रहते हैं, फिर भी ये कैसे हैं, जब जब हम अपने इंद्रियों से, इंद्रियों में भी अग्नि है ना तेज, जब जब इस अग्नि का प्रयोग संसार की तरफ होता है तब तब हमारी आसुरी वृत्ति दृढ़ होती है। जब इन्हीं इंद्रियों को अंतर्मुखी बना करके अपने आत्मा की ओर प्रवृत्त करते हैं तब यही क्या हो जाते हैं, वीर्यम तेजश्च विन्दती, वह तेजो मैं जो परमात्मा है, जो वीर्य मतलब वीरता बल, उसकी प्राप्ति होती है। वीर्यम तेजश्च विन्दती, क्योंकि वह तेजो मैं परमात्मा है, इंद्रियों के द्वारा बहिर्मुखी होने पर हमारे सभी बुद्धि मन सब जर्जर होने लगते हैं, कमजोरी आती है। और जब इसको अपने अंदर की ओर हम मोड़ते हैं तो यमे वैसव वृणते तेन लभ्य, जिसने इसका वरण कर लिया तो परमात्मा फिर उसका वरण कर लेता है। लोग बोलते भगवान सबके लिए एक समान है, फिर सभी को एक साथ सुख मिलना चाहिए, सभी को दुख जो मिले तो एक साथ मिले, नहीं तो किसी को न मिले, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें वैषम्य निर्घृण्य आदि दोष माना जाता है, ब्रह्म सूत्र में इसका बहुत विचार हुआ है। ईश्वर के तरफ थोड़ा अभिमुख होने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। जन्म लिया, सब आए एक ही रास्ते से, प्राण छूटेगा उसके भी निमित्त सबके भिन्न भिन्न होंगे। जन्म लेते समय में भी कोई ऐसा भी बालक जन्म लेता है, खबर सुनते हैं कोई गई माई खेत में काम कर रहे माता जी घास काटने, उसी समय बच्चा पैदा हो गया, न कोई वहां ढाई है न कोई डॉक्टर है, और एक बच्चा अस्पताल में ऑपरेशन करके निकाला जा रहा है। डॉक्टर लोग मुंह में पट्टी बांधे, चिमटा से खींच रहे हैं, बच्चा रो रहा है, कष्ट पा रहा है। उसके जन्म के समय में ही ऐसा कष्ट लिखा था, क्या किया जाए। अमीरी गरीबी अपनी जगह है, प्रत्येक व्यक्ति के कर्मों का जो फल है वो भिन्न भिन्न है। इसलिए जन्म के समय, मृत्यु के समय जो ये नैमित्तिक जो सुख दुख है, इससे भी पता चलता है जन्म लेना और मरना भी सबका अपना अपना प्रारब्ध है। सबकी यही इच्छा है ना, अभी जाना सबको है, कैसे जाना चाहते हैं आप लोग थोड़ा बता दो। बाहर बाहर तो कहेंगे जाने की बात ही मत करो। इतने तो हम लोगों की हिम्मत हो गई है कि मृत्यु को तो नहीं टाल सकते, लेकिन मृत्यु से होने वाले दुख को हम झेल सकते हैं। सत्संग करने का सबसे बड़ा लाभ यही है। एक अच्छे सत्संगी थे, अभी उनका शरीर छूट गया, तो वो बोलते थे कि महाराज जो हमने किया है, भगवान को भी जन्म में जेल में जन्म लेना पड़ा, राम जी को भी वनवास का दुख उठाना पड़ा, नल राम युधिष्ठिरा, पंचदशी में विद्यारण्य स्वामी जी उदाहरण देते हैं कि राजा नल, भगवान राम, पांडवों में इन सबको जो कष्ट का अनुभव हुआ है, तो क्या था, एकदम तीव्रतर प्रारब्ध, कोई इससे बच नहीं सका। तो हम लोग भला किस खेत की मूली है, तो ये तो सबको भोगना ही पड़ता था। वो बोलते हैं थे हमेशा कि जो है लिखा हुआ तो भोगना ही पड़ेगा, बस एक तो सत्संग का ही फल है, और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु जो भी हमारे अपने किए हुए कर्मों का फल मिले, उस फल को भोगने की शक्ति देना, साहस देना। सब यहां हम बैठे हैं, किसका क्या प्रारब्ध कोई नहीं जानता, सत्संग कर रहे हैं, पूर्व जन्म का पुण्य उदित हुआ है, ऐसी बुद्धि, क्योंकि ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना, ईश्वर के अनुग्रह से ही ऐसी वासना होती है। वासना मतलब इच्छा कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है, और ये भी उसकी जिज्ञासा होती किसके, ईश्वर का अनुग्रह किसको प्राप्त होता है, तो स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात् साधनम प्रभवित पुंसाम वैराग्यादि चतुष्टयम्। ये जो वैराग्यादि जो साधन चतुष्टय की बात की जाती है, स्ववर्णाश्रम धर्मेण, अपने वर्ण और आश्रम का जो धर्म है उसके अनुसार जिनका जीवन यापन हो रहा है, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर ही भगवान की कृपा होती है। स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा, यही तप है। इस तप के द्वारा हरितोषणात्, भगवान हरि क्या होते, तुष्ट होते, प्रसन्न होते, और भगवान की प्रसन्नता का फल क्या है, तो भागवत का उदाहरण सुनते क्या बोलते भगवान, अनुगृहणाम्यहम येषाम हरिष्ये तद धनम शनै। एक साथ धन का अपहरण नहीं करते, जैसे कहीं नुकसान होने लग जाए तो समझ लेना चाहिए अब चेतावनी मिल रही है। एक साथ यदि हो जाए तो उस कष्ट को कोई सही नहीं पाएगा। थोड़ा थोड़ा नुकसान होने लग जाए तो अब भगवान बोलते कि इसकी भी आदत डालो। उदाहरण है इसका, हंसी भी आती है और बात भी सही है। पुराने जमाने के ब्राह्मण लोग बोलते थे, महाराज देखिए अभी जब 100 का नोट आता है ना, उसके बाद कोई 10 का रखता है, लगता है देखो 10 ही रखा, लेकिन 500 का आता है तो बड़ा नोट आ गया। कैसी बुद्धि है, देखो नोट सारे ही है, महत्व बुद्धि। तो पहले जब नोट नहीं दिखता था, 10 रुपया भी मिले, आहा बड़ी दक्षिणा मिल गई। तो पंडित लोग ब्राह्मण लोग जब भंडारे में कहीं मिलता है ना दक्षिणा नोट में, तो खूब प्रसन्न होकर के श्लोक बोलते हैं। आपने देखा होगा आश्रमों में जब भंडारा होता है तो श्लोक बोलते हैं, और उस श्लोक से जो अन्नदाता है उनके लिए मंगल कामना व्यक्त की जाती है कि हे प्रभु इनके ऊपर खूब कृपा करो और ऐसे ही हमको भंडारा खिलाते रहे, तो उसमें भगवान का स्मरण भी होता है। ये तो हो गई ब्राह्मणों की बात, जरा सी दक्षिणा मिली खुश हो जाते हैं, बड़ा अच्छा यजमान था, बड़े अच्छे भगत थे, अच्छा भंडारा किया, मजा आ गया, आनंद आ गया। अब जो व्यापारी लोग हैं उनकी बात देखो, रोज के यदि 50,000 की लेन देन है, टर्नओवर क्या बोलते हैं, यदि हो और 51,000 हो जाए 50 की जगह, पूछो लाला जी कैसा चल रहा है धंधा। बस महाराज जी भगवान की कृपा है, दाल रोटी चल जाती है। खुश हो गए तो बोलेगा ही नहीं, बहुत दिया, जो मैंने सोचा नहीं था उससे भी ज्यादा मिला। लेकिन 50,000 की जगह 51,000 आए तब की भाषा है ये। जब उस समय पूछो कैसा चल रहा है तो बोलते दाल रोटी चल जाती है। और 50 की जगह 49,000 आए और फिर पूछो कैसा चल रहा है, महाराज बाजार में बड़ी मंदी आ गई, हालत खराब है। क्यों हालत खराब है, वो 1,000 जो कम हो गया है ना वो दिख रहा है, 49,000 आया वो नहीं दिख रहा है। 1,000 कम क्यों हो गया, वो कभी प्रसन्न होते ही नहीं। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करता हूं, कृपा करता हूं, तो थोड़ा थोड़ा उसका मैं हरण, हरण मतलब अपहरण, लेने लगते हैं। हरिष्ये तद धनम शनई, वो शनई जो है ना बहुत महत्वपूर्ण वाक्य, भागवत का श्लोक है कि धीरे धीरे उसके एक चीज नहीं, धन का छोड़ो, परिवार से भी योग करवा देंगे, कहीं जिसमें ज्यादा मोह होगा उसमें कुछ नुकसान करवा देंगे, कि ताकि ऐसे दुख आवे तो थोड़ा बाबुलनाथ की तरफ जाए, क्योंकि दुख में सुमिरण सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरण करे तो दुख काहे को होए। सब जानते इस बात को, फिर भी जब सुख की स्थिति होती है, कोई नहीं भगवान का दर्शन कर लेंगे बाद में, अब ये काम जरूरी है। व्यवहार में महत्व बुद्धि होने से ही हम परमार्थ की तरफ नहीं बढ़ पाते। इसके लिए भगवान निर्देश कर रहे हैं कि मैं तो बस तुम केवल अपनी तरफ ध्यान करो, मैं तो तुम्हारे हृदय में ही बैठा हूं। इसके लिए एक बहुत सुंदर आचार्य बिल्लू मंगल हुए, उन्होंने एक दृष्टांत दिया है, बहुत अच्छा है सुनने में। भगवान कृष्ण यशोदा जी का संवाद है। एक बार क्या हो, भगवान को दूध पीना होगा तो यशोदा जी से बोलते हैं माता, तो माता जी क्या बोलती है, किम यदुनाथ, पुरानी भाषा है। अभी कोई बोले मां क्या हो गया, क्यों दिमाग खा रहा है, यशोदा जी बोलती है जैसे उन्होंने संबोधित किया, माता हे मां, तो बोलते हैं हां बेटा यदुनाथ, किम यदुनाथ, क्या बेटा क्या बात है, देहि चषकम, मातः किम यदुनाथ देहि चषकम। चषक बोलते हैं संस्कृत में गिलास को, गिलास दो, गिलास क्या करेगा गिलास का,